जैसा कि बोर्ड में लिखा हुआ है, आज के दिन श्री प्रभुपाद जी अमेरिका में अपना चल रखे थे। आज के दिन प्रभुपाद जी वहाँ पहुँचे थे और आज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का अंतिम दिन है, तो इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज के दिन श्री प्रभुपाद जी अमेरिका पहुँचे थे, लेकिन पहुँचने से पहले उन्होंने कितना संघर्ष किया इस देश में, भारतवर्ष में, बहुत संघर्ष किया, आसानी से नहीं गए थे। अगर हम फ्लैशबैक करें तो देखेंगे कि बहुत संघर्ष किया, बड़े मुश्किल से तो उनको विदेश जाने का वीसा मिला अमेरिका जाने का, बड़े मुश्किल से। एक अग्रवाल जी थे, अपने बेटे से कह करके वहाँ से लेटर मंगवाया और वीसा आ गया। फिर जाने के लिए पैसा नहीं था प्रभुपाद जी के पास, तो प्रभुपाद जी ने कि हवाई जहाज जा नहीं सकते थे, इतना पैसा था ही नहीं। और प्रभुपाद जी ने फिर श्रीमती मुरारजी से रिक्वेस्ट किया कि आप जो हैं मुझे अपने कार्गो शिप से फ्री में जाने की व्यवस्था कर दें, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि आप इतने बूढ़े हो गए हो, वहाँ पर क्या करोगे जाकर, वहाँ इतनी ठंडे पड़ते हैं, ये उम्र नहीं है जाने की। लेकिन प्रभुपाद जी जब ठान लिए तो ठान लिए। इससे पता चलता है प्रभुपाद जी एक बार जो अपने दिमाग में बैठा लिया उसको पूरा करके ही रहते थे, उनका सपोर्ट करते थे स्वयं भगवान। कि जो शुद्ध भक्त हैं, भगवान गीता बताते हैं कि जो शुद्ध भक्त होता है वो जो भी इच्छा करता है मैं सब पूरा करता हूँ। क्योंकि प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त तो इसलिए उनकी इच्छा पूरी करना ही था। अंत में भगवान की कृपा से श्रीमती मुरारजी तैयार हो गई और प्रभुपाद जी को कार्गो शिप से मालवाहक जलदूत से जाने की व्यवस्था कर दिया। आप सब जानते हैं किस तरह जैसे तैसे प्रभुपाद जी अमेरिका गए और आज के दिन ही पहुँचे। तो देखिए प्रभुपाद जी का जाना पहुँचना एक साधारण काम नहीं था। ऐसा नहीं था कि वो जो शिप था एक ही बार गया। लोग कितने शिप आते हैं जाते हैं, वाई जा सारे जा रहे हैं, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति गया मैं जिसका चरण अमेरिका के जमीन पर पड़ा प्रभुपाद जी का, तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। प्रभुपाद जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं, असाधारण, क्योंकि गए और एक साल के अंदर 1966 में प्रभुपाद जी ने न्यूयॉर्क सिटी में इस्कॉन की स्थापना कर दी। सोचने वाली बात, और जा करके अपने पास सिर्फ 40-45 रुपये थे उनके पास, लेकिन एक ट्रंक था जिसमें उन्होंने भगवद गीता से भाग जो उन्होंने इंग्लिश में अनुवाद कर रखा था, बैक टू गॉड हेड्स, करताल, मृदंग, हारमोनियम, ये सब सामग्री थी। लेकिन प्रभुपाद जी वहाँ पहुँचे तो टॉमकिन स्क्वायर पार्क, जो अभी भी है, बहुत प्रसिद्ध पार्क है न्यूयॉर्क सिटी का, वहाँ पे एक बहुत सबला ब्रिज, वो ब्रिज अभी भी है। उसी ब्रिज के नीचे प्रभुपाद जी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी कभी आप सबको किसी को अवसर मिले न्यूयॉर्क जाने का तो आप लोग टॉमकिन स्क्वायर पार्क पहुँचे, तो अभी भी उस ब्रिज के नीचे लिखा है दिस इज वेरी ऑस्पिशियस स्ट्रीट वेयर फाउंडर आचार्य ऑफ इस्कॉन स्टार्टेड, ऐसा लिखा हुआ बोर्ड पे लिखा हुआ है। कितनी बड़ी बात है। तो ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, प्रभुपाद जी हरे कृष्ण महामंत्र ही लेकर के गए, समझ गए आप। महामंत्र स्टार्ट कैसे हुआ, वास्तव में ये जो भगवान का नाम हर युग में चलता रहा है, लेकिन हर युग में अलग अलग महामंत्र, जैसे ओम नमः भक्ति वासुदेवाय का जप जो है पहले करते थे, जैसे पहले के जो महान भक्त रहे हैं सब ओम नमः भक्ति वासुदेवाय, यहाँ तक कि ध्रुव महाराज को भी नारद जी ने शिक्षा दी आप इस मन का। लेकिन जब लगभग 525 साल पहले चैतन्य महाप्रभु आए तो उन्होंने क्या दिया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, और स्वयं साक्षात भगवान। देखिए चैतन्य महाप्रभु बहुत पावरफुल अवतार है क्योंकि उन्होंने षड्भुज रूप दिखाया है ना, अर्थात राम का भी रूप दिखाया और कृष्ण तो है और अपना है। कहानी का मतलब यह है कि इतना पावरफुल पर्सनालिटी इस पृथ्वी पर आया है, आए यहाँ पे क्या लेकर के, हरिनाम लेकर के, गोलोक के प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। ये जो हरिनाम भगवान का नाम है ये कहाँ से आया हुआ है, गोलोक से, एक गोलोक का प्रेम धन है उसको लेकर के चैतन्य महाप्रभु इस पृथ्वी पर आए, यहाँ पर आए और हम सबको वितरित कर दिया। लेकिन प्रभुपाद जी उसी कड़ी में आए और जब उसी परंपरा में जब प्रभुपाद जी आए तो जो चमत्कार प्रभुपाद जी ने किया आज तक किसी ने नहीं किया। हमारी परंपरा में बहुत से लोग आए, भक्त सिद्धांत सरस्वती महाराज अपने कितने शिष्यों को विदेश भेजा है ना, लेकिन वो सफलता नहीं मिली जो प्रभुपाद जी का, या जान लीजिए आते तो बहुत लोग हैं। जैसे हम तो भारतवर्ष में ही जम लिए लेकिन हमें स्वयं चैतन्य महाप्रभु के बारे में जानकारी नहीं थी, जो हमारे शंकर गोस्वामी बिंद हैं उनकी भी जानकारी हमें नहीं थी, आप समझे, जबकि हम लोग भारतवर्ष जम लिए लेकिन हमको खुद नहीं पता था कि चैतन्य महाप्रभु कोई अवतार हुआ है, या हमें रघुनाथ गोस्वामी सनातन गोस्वामी जी गोस्वामी है पता ही नहीं था। यहाँ पे तो बस शंकर जी हनुमान जी गणेश जी बचपन से हम लोग यही जानते थे, सरस्वती जी की पूजा करते जानते, जो स्टूडेंट होते हैं सरस्वती की शिक्षा प्रार्थना उनकी होती थी, कुछ जानते ही नहीं थे। तो कहने का मतलब कि प्रभुपाद जी एक ऐसे महान भक्त अपनी परंपरा हुए कि जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु का संदेश ही नहीं चैतन्य महाप्रभु के बारे में पूरी दुनिया को बता दिया, उससे महान कोई हो सकता। भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा प्रभुपाद जी निकालते, सोचने वाली बात है। हनुमान जी को लोग बताते, यही अंग्रेज लोग जब प्रभुपाद जी हनुमान जी को बताते थे तो मंकी डॉग, लेकिन आज वही अंग्रेज जब भक्त बन गए सब हनुमान जी करते हैं, सीताराम से हनुमान जी की जय। कहने का मतलब है कि प्रभुपाद जी इतना बड़ा मोमेंट खड़ा कर दिया किसके बल पर, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। आज उसी का फल है, इसी हरे कृष्ण महामंत्र का फल है। उसका फल क्या है, इस्कॉन हम लोग समझ नहीं पाते वास्तव में ये हरे कृष्ण महामंत्र का जो फल है, फल के रूप में क्या हुआ, इस्कॉन मना कि प्रभुपाद ने शीडिंग की कहाँ, न्यूयॉर्क टाउन स्क्वायर पार्क, ये हरे कृष्ण महामंत्र का बिखेरा तो क्या हुआ, आज इतना बड़ा पौधा बन गया है कि आज हम लोग क्या है, खिले हुए यहाँ। अगर प्रभुपाद जी नहीं गए होते आज के दिन तो हम लोग यहाँ नहीं बैठे होते, ये आप जान लीजिए कितना लिंकअप है कि एक व्यक्ति सब ना इतने उम्र में जाता है और आप कुछ नहीं सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र लेकर के जाता है, भगवत गीता का संदेश, और इतना बड़ा मोमेंट खड़ा कर देता है। तो नाम में कितनी शक्ति है इससे पता चलता है, और कुछ नाम के बल पर हमारा जो वैष्णव सिद्धांत है हम कभी गहराई से सोचते नहीं इस बात को, क्या है नाम में रति, वैदिक सिद्धांत क्या है नामे रति, नाम के प्रति रति अनुराग होना चाहिए। आज हमारे हृदय में नाम के प्रति अनुराग उत्पन्न नहीं हो पाया। नामाभास हो सकता है लेकिन नाम के प्रति अनुराग उत्पन्न होना वो बहुत इंपॉर्टेंट है जो प्रभुपाद ने किया। नाम के प्रति जितना अनुराग उत्पन्न होगा नामी उतना ही क्या होगा आपके प्रति आकर्षित होगा, क्योंकि नामी कौन है? कृष्ण है। और नाम कौन है? उनका नाम। तो नाम के भगवान के नाम के प्रति जितना ही हमारे हृदय में रति होगी अनुराग उत्पन्न होगा भगवान कृष्ण उतने हमारे पर क्या होंगे करुणा की बारिश करेंगे। ए पैशोषण नामे रति, कि नाम में और नामी में रुचि नहीं है, आप नामी को पकड़ नहीं सकते। अगर नामी को कृपा प्राप्त करना है तो पहले उनके नाम के प्रति अनुराग उत्पन्न होना चाहिए। बहुत बड़ा रहस्य है जिसे हम समझ नहीं पाते कि प्रभुपाद जी क्यों सफल हुए। इसलिए सफल हुए कि नाम के प्रति हम तो जानते हैं कि नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं, लेकिन इस चीज को गहराई से न समझ पाए हैं और न कभी नाम के प्रति उतना प्रेम उत्पन्न न हो पाए। ये समस्या हमें पहले इस बेसिक को समझना चाहिए कि नाम है रति तो प्रभुपाद जी क्यों सफल है, इसलिए कि नाम के प्रति अनुराग उत्पन्न हो गया। प्रभुपाद जी ने इसको प्रैक्टिकल समझा कि नाम में और नाम में अंतर नहीं है, तो नाम ही जो है हमारे लिए क्या है महत्वपूर्ण है। नाम ही उतना महत्वपूर्ण है नाम, नाम क्योंकि नाम के प्रति अगर प्रेम उत्पन्न हो गया तो नामी कौन है, नाम क्या है? नामी ही है। तो जब नाम के प्रति अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ तो नामी के प्रति हम कैसे अनुराग उत्पन्न होगा, उसका बात हम कैसे मानेंगे? इसलिए कृष्ण की बात हम नहीं मान पा रहे क्योंकि नाम के प्रति हमारे हृदय में अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ है। ये हमको समझना बहुत जरूरी है। हम नामी के अनुसार कैसे चलेंगे जब नाम के प्रति हमारे हृदय में प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ। नाम जपने में ही हमारी नानी याद आती है ना, 16 माला जप करना होता है तो बड़ा कठिन, इतना आसान नहीं। जिस तरह शास्त्र में बताया गया 16 माला जप करना, तो लोग जैसे 16 माला जप करने से बहुत बड़ा काम कर लिया उसके बाद जब करना ही नहीं, ऐसा नहीं। एटलीस्ट 16 राउंड, कम से कम सीखना तो करना ही करना है, लेकिन ऊपर करने की कोई सीमा नहीं। तो नाम के प्रति अनुराग उत्पन्न होना बहुत जरूरी, जब करना तब नाम ही क्या जाए वो प्रसन्न होगा। नाम की रति ही अगर नाम के प्रति अनुराग उत्पन्न होना ये बहुत, प्रभुपाद जी ने ऐसे ही किया। प्रभुपाद जी इतनी कृपालु है कि हमको कहा कि 16 माला से करो, लेकिन ये 16 माला का जब तब आपको प्रभावशाली करेगा जब आप 10 नाम प्रात पैशो प्रात से अपने आप को क्या रखेंगे, दूर रखेंगे। आज असर इस नहीं पड़ रहा है कि हम नाम भी जप कर रहे हैं, ईर्ष्या द्वेष जलन जितनी चीज अवांछित चीजें हैं वो हमसे रिमूव नहीं हो पा रही। ये बहुत जरूरी है। प्रभुपाद जी ने तातों बताए हैं कि 10 नाम अपराध बहुत खतरनाक है। 10 नाम अपराध बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नाम मन जितने अपराध है उनसे बचते हुए अगर हम 16 माला का जप करते हैं वो देखिए चमत्कार करेगा। अभी हमारे रास्ते में तो प्रभुपाद जी की 26 क्वालिटी के बारे में सत्संग स्वामी जी महाराज ने बहुत, जैसे 26 गुण होते हैं विश्व, उन्होंने प्रभुपाद जी 26 गुण बताए, 26 क्वालिटीज इन श्री प्रभुपाद। तो उनमें प्रभुपाद जी फॉल्ट कभी किसी फॉल्ट देखते ही नहीं। आज उनके शिष्य क्यों सफल हुए कि प्रभुपाद जी अपने शिष्यों से बहुत प्रेम करते थे और उन पर शिष्यों का भी अपने गुरु के प्रति पूरा विश्वास था। प्रभुपाद जी जब बोलते थे सब आंखों पर लिख करके चल देते थे। समय बहुत कम था लेकिन प्रभुपाद जी ने तब भी इतने कम समय 108 मंदिर का निर्माण करा दिया। किसके बल पर? अपने शिष्यों के बल पर। क्योंकि प्रेम दोनों तरफ से होता है, और राग दोनों तरफ होता है, प्रेम बहुत जरूरी है, है ना। तो ये प्रेम उत्पन्न होता है विश्वास। तो हमारा एक विशेष सिद्धांत है, प्रभुपाद हमेशा बोलते हैं लव ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन। जो बेसिक चीजें हैं इसी को प्रभुपाद जी ने जो है पकड़ के रखा, लव ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन। भगवान भी आपको तभी तो कोऑपरेट करेंगे जब आपके भगवान के प्रति प्रेम होगा और विश्वास होगा, तब भगवान आपकी सहायता करेंगे। तो ये फार्मूला हर जगह हर क्षेत्र में लागू होता है जो प्रभुपाद जी ने दिया, लव ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन। तो वो प्रेम उत्पन्न होना चाहिए, विश्वास उत्पन्न होना चाहिए। तो प्रेम और विश्वास जहां होता है वही सहयोग की भावना क्या होती है, पनपती है, और तब विकास होता है। कि बिना सहयोग से विकास कैसे होगा, तो सहयोग बहुत जरूरी है। अब भगवान का सहयोग तो बहुत जरूरी है कि भगवान की कृपा से ही सब कुछ संभव है। अब प्रभुपाद जी ने क्या किया, भगवान से सब काम कराया, भगवान को करना ही पड़ा। क्योंकि प्रभुपाद जी, क्योंकि भगवान ने तो वचनबद्ध है कि शुद्ध भक्त जो चाहता है मुझे करना ही पड़ता है। भगवान कहते हैं आप भक्त पराधीन हो, मैं तो अपने भक्तों का अधीन हूं, मेरा भक्त जैसे नचाता है मैं नाचता हूं, ये भगवान कहते हैं। अब प्रभुपाद जी क्या कहते हैं भगवान से कि हे कृष्ण आज आप मुझे इस गृह स्थान पर लाके खड़ा कर दिया, आप यहां पकड़ लाए हैं तो आप जैसे नचाना नचाना चाहते हैं नचाए, मैं नाचने के लिए यहां पे आया हूं। जैसे बातें कर रहे हो ये है शुद्ध भक्त के लक्षण। इसलिए प्रभुपाद जी असाधारण है, शुद्ध भक्त इस तरह भक्त की सोच कितनी अच्छी थी। आज कितने भक्त आ रहे हैं जा रहे हैं मिलकर, आ रहे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जो भी भक्ति थी इंडिया में वो छोड़ करके जाके अमेरिका के कल में टी शर्ट बेच रहे हैं, कोई चुआ चुमाई कर रहा है, है ना, राइट। कितनी गलत बात। तो शुद्ध भक्त और ऐसे सजीव बड़ा अंतर होता है। भेष बनाने से कोई महान नहीं बनता, मटका पहने से कोई महान नहीं बनता, टोपी लगाने से कोई नेता नहीं बनता, है नहीं, गिरुआ बस पाने कोई ब्रह्मचारी नहीं बनता, कोई वैष्णव नहीं बनता, अपने आचरण से वैष्णव बनता है। आपका आचरण कैसा है, और साधक कितने साधु संत, फर्जी साधु संत है ना, जो साधु के वेश में असाधु के काम कर सब अब जेल के अंदर जा रहे हैं, धीरे धीरे सब स्क्रीनिंग हो रही है। क्योंकि आप ज्यादा दिन तक ठहर नहीं सकते, ये नकलीपन ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, है ना, अश्रित तो आएगा ही। प्रभुपाद बोलते हैं कि जब रावण देखो सीता का हरण का प्लान बन रहा था, तो रावण बहुत बड़ा विद्वान था, पंडित था, उसने कहा क्योंकि स्त्री अकेली है, ने? हम कोई भी भेष बदल के जाएंगे वो सामने आएगी। उसने कहा कि जो स्त्रियां होती हैं वो साधु संतों से बड़ी जल्दी प्रभावित हो जाती है, क्योंकि उनका हृदय क्या होता है, कोमल होता है। जो लेडीज होती हैं उनका हृदय निश्चल भगवान ने भक्ति की ओर लगाया हुआ है, उनको थोड़ा सा डाइवर्ट करने की जरूरत है, ट्रैक पर लाने की जरूरत है, अदरवाइज बाय नेचर उनके अंदर श्राप का रूप होता है भगवान के प्रति। इसलिए कोई भी धार्मिक कर्म होता है औरतों की भीड़ सब ज्यादा होती है, ये नेचुरल है। तो रावण जानता था इस बात को, इसलिए हम साधु बन जाएंगे तो अपने आप सीता जी आ जाएंगे, राइट। तो देखो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य बात बताया है, प्रभुपाद बताया है, इसीलिए हमें साधुओं से सावधान भी रहना चाहिए कि कोई ऐसा ना साधु जो रावण साधु रावण जैसा हो, ऐसा नहीं, आजकल ये ज्यादा हो रहा है। तो इसलिए हमें बहुत सावधान होना चाहिए हमें किस तरह। तो प्रभुपाद जी ने कितनी शुद्धता से इस मोमेंट को क्या किया, खड़ा कर दिया। और उसका सफलता का राज क्या है, सिर्फ भगवान का नाम और कुछ नहीं, सिर्फ भगवान के नाम पर इस कान का जो है स्टार्टिंग। प्रभुपाद जी अकेले गए कीर्तन करना शुरू कर दिया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ऐसी हरे महा हरे कृष्ण महामंत्र को लोगों ने जो बैठे थे वहाँ हिप्पीज, हिप्पी समझते ना, हिप्पीज जो एलएचडी लेते थे नशा करते थे और सब भी प्रभुपाद जी के साथ होले सबको हरे कृष्ण महामंत्र इतना अच्छा लगा। तब भक्त सिद्धांत सरस्वती महाराज बताते हैं ओ ससुरदास महाराज प्रभुपाद जी कि प्रभुपाद जी ने कभी भी सिद्धांत से समझौता नहीं किया, सत्य पर हमेशा टिके रहे, सिद्धांत से कोई समझौता नहीं। उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र, कृष्ण का प्रसाद और भगवान की जो वाणी भगवद गीता, इसे तीन से पूरे दुनिया को परिवर्तित कर दिया। प्रभुपाद जी कीर्तन कराते थे और उसके बाद भगवद गीता से लेक्चर देते थे और प्रसाद खिलाते थे। ये प्रसाद का बड़ा महत्व है, इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा कि हमें कृष्ण प्रसाद के अलावा कुछ खाना नहीं चाहिए, क्योंकि कृष्ण प्रसाद में और स्वयं कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी बहुत आसान कर दिया हमें जो चेतन महाप्रभु के सिद्धांत को, इस तरह से हमको प्रैक्टिकल जीवन में उतार कर बता दिया। और चेतन महाप्रभु आए थे इस धरती पर इसीलिए कि हरिनाम के द्वारा हम जीव का क्या करेंगे, उद्धार करेंगे। क्योंकि जगाई मधाई के केस में है ना, भगवान चेतन महापुरुष सुदर्शन बुला रहे थे नित्यानंद प्रभु को, उसने जब पत्थर फेंका था, मारा था, लेकिन नित्यानंद प्रभु कहा कि नहीं नहीं, ये तो कलयुग में आओ नाम के रूप में होता, ये तो नाम से इनका उद्धार करना है, प्रेम से इनका परिवर्तित करना, हृदय को परिवर्तित करना, उन्होंने सहना। तो हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि इस कलयुग में पैदा हुए। अब आप सोचे कि कलयुग पैदा होने कोई भाग की बात है, वास्तव में भाग की बात है, इसलिए कि कलयुग ही ऐसा है जहाँ की बड़े आसानी से आप भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। बाकी युग में तो बहुत बड़ी बड़ी तपस्या यज्ञ करना पड़ता था, तब जाकर के ये फल मिलता था, और आज इस कलयुग में क्या है, आप वही चीज हरिनाम संकीर्तन की, आप चलते फिरते चेतन महाप्रभु कहते हैं खाते सीते यथा तथा नाम ले, ये भगवान का नाम है, एक ऐसा है कि खाते पीते सीते यथा तथा नाम ले, आप जहाँ हैं वहीं भगवान का नाम ले सकते हैं, ये यज्ञ कर सकते हैं, बाकी दूसरे यज्ञ आप ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन हरि नाम संकीर्तन ऐसा यज्ञ है कि आप कहीं भी कर सकते हैं, आप जाएं वहीं भी आपका यज्ञ शुरू हो जाता है। आप अगर हरे कृष्ण नाम का कीर्तन या जप करना शुरू कर देते हैं, प्रभुपाद जी से अपने प्रवचन बताते हैं, आप ये बताया गया है कि गृह ठाकुर पणे ठाकुर सदा हरि बोले ठाकुर, आप घर में रहे बाहर रहे जहाँ भी रहे आप हरे कृष्ण तो बोल ही सकते, इसमें कोई दोरा नहीं। चूंकि आप हरे कृष्ण बोलेंगे तो सभी बोलेंगे। अभी 21 सितंबर को राष्ट्रपति भवन में एक कार्यक्रम था, उसमें ऑल इंडिया अहिंसा एक कंपेन था, तो ऑर्गेनाइजर दूसरे संस्था के लोग थे, लेकिन संयोग से मुझे भी उन्होंने बुला लिया था। 2 मिनट की स्पीच रखी थी वहाँ पर, प्रेसिडेंट साहब के सामने बैठे थे, ये मैंने जमनत में डाल रखा है। तो राष्ट्रपति हमने स्टार्ट ही हरे कृष्णा से किया, क्योंकि जब हरे कृष्णा बोलेंगे तो लोग बोलेंगे जो बैठे। पहली बार राष्ट्रपति भवन में ऐसा कार्यक्रम हुआ जहाँ हरे कृष्णा बोला, और उसके बाद जो स्पीच थी हमने दिया, स्टार्ट किससे किया, गीता के श्लोक से, संस्कृत गीता के श्लोक से उसका लिया, और उसे प्रभुपाद जी किस अहिंसा, जो कि टॉपिक अहिंसा था, अहिंसा को प्रभुपाद जी ने स्वयं भगवान ने कैसे डिफाइन किया चीज़ों से उन्होंने प्रेजेंट कर दिया। जो कुरान वाले आए थे कुरान से कोट कर रहे थे, बाइबल बाइबल से हमने गीता से कोट की, तो 16 अध्याय का जो दूसरा श्लोक है उससे भगवान अहिंसा शुरू करते हैं, और उसका प्रभुपाद इतना बड़ा डिफाइन बताएगा परपट अहिंसा का वास्तव, व्हाट द रियल मीनिंग्स ऑफ अहिंसा नॉन वायलेंस। तो प्रभुपाद जी ने हर टॉपिक पे सब चीज पे उन्होंने बहुत कुछ देखी है। वेदा पेश हमने अहिंसा के बारे में जब लिखा 3-4 पेज का प्रभुपाद जी अहिंसा के बारे में, सोचने वाली बात है। कहने का मतलब कि प्रभुपाद जी कभी भी सिद्धांत से जो है समझौता नहीं किया, और उसमें निश्चित रूप से ये जो नॉन वायलेंस पूरे विश्व में ये जो वायलेंस फैला हुआ है ना, मार धड़ भड़ा एक दूसरे को मारे, जैसे भी नैरोबी में कोई माल में कुछ आतंकवादी घुस के अनजानों को मारे, ये क्या ऐसा हिंसा है? इसका ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि लोग जो है चार नियमों का पालन नहीं कर रहे। ये बात मैंने दी थी, मैंने जब कंक्लूडिंग किया था कि अगर पूरे वर्ल्ड को जो है अगर सुधारना चाहते हो, संवारना चाहते हो त्रिगुणों से, तो पहले हमें इन चार नियमों का पालन करना पड़ेगा। कंक्लूडिंग इससे की थी कि मांसाहार, नशा, अभय समन, अच्छुआ, जब तक हम संसार को इससे मुक्त नहीं करेंगे, हम जहां हैं वहीं रहेंगे। क्योंकि कोई भी चीज आज अगर मांसाहार जो जिस तरह से फैला हुआ है बहुत गलत है, जैसा खाए अन्न वैसे बने मन। अगर आप मांसाहारी रहेंगे तो लड़ाई झगड़ा तो करेंगे। तो कहने का मतलब कि ये जो प्रभुपाद जी ने हमको ये बीजारोपण किया, इस संस्था को बनाया, सिर्फ किसके दम पे? हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा मंत्र को ही हमें गंभीरता से लेना है। अगर हमारी चांटिंग अच्छी होगी, अगर हम हरे कृष्णा मंत्र का जब अच्छे ढंग से करेंगे, जब हरिनाम संकीर्तन होगा हम कीर्तन करेंगे, ऐसे जब करने में नाम जितनी मेरी रुचि उत्पन्न होगी, आज समझे कि उतने हम भक्ति में क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ये परख सकते हैं, नाम के प्रति रुचि जितना उत्पन्न होती है उतना हम भक्ति में क्या रहे हैं, आगे, अर्थात कृष्ण की हमारे ब्लेसिंग है। क्योंकि नाम रुचि अगर पैदा हो जाती है तो ये जो विकार है इससे हमें क्या होना चाहिए, इसलिए प्रभु बोलते थे कि मैं 10 नाम अपराध जो है इससे जरूर बचना चाहिए। हुआ क्या कि एक बार कुछ लोग नाव में बैठ करके उस पार जा रहे थे, जैसे नदी में दो पार होते, तो इस पार से उस पार जा रहे थे। तो रात को जितने भी थे लोग सब नाव में बैठ गए, राइट, और उसके बाद मिल करके चलाते रहे। लेकिन जब सुबह हुआ तो उन्होंने क्या देखा कि नाव वही है जहां से उन्होंने स्टार्ट किया था। तो बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि हम तो रात भर इतना मेहनत किया, सोए भी नहीं और नाव के खेते रहे, हम लोग उस पार पहुंचे नहीं। तो कहां गलती हो गई? तो गलती वही हो गई जहां नहीं होनी चाहिए। उन्होंने क्या किया था, जो लंगर था वो निकाला नहीं था। तो ये जो अपराध है ये हमारे लंगर है। आप कितना भी चैंटिंग करें, खिसिया खिसिया करके, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे, हमारे जब भक्त जब करते हैं खंभा पार करा जाए, हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 राम, क्योंकि मन जो विचलित करता है, तो मन न विचलित करे जैसे छटकता है ना, राइट, इसलिए ऐसा होता है ना। कोई वहां जा खड़ा हो गए हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 राम, क्योंकि माइंड उसका जो है डिस्टर्ब कर, कि मन है ऐसा, कोई भी अच्छा काम करेंगे तो मन वो अच्छा काम करने नहीं देता है, कि मन बड़ा शत्रु नहीं चाहता कि कोई हरे कृष्णा मन का जप करे, कोई भक्ति करे, ऐसा होता है। कभी कभी जब प्रवचन होता तो नींद आने लगती है, मन सुनना नहीं चाहता है ना, भाई चुगली निंदा हो तो नींद बिल्कुल नहीं लगेगी, हाँ तो हाँ फाड़ फाड़ कर सुनेंगे, कान लगा लगा ये स्वभाव नेचुरल स्वभाव है, तो हमें बचना चाहिए। तो हरे ये जो है बहुत आवश्यक है। तो लंगर उन्होंने क्या निकाला, तो ये जो लंगर है, जैसे किसी डॉक्टर पास जाओ वो जब दवा देता है तो बताता है कि आपको ये परहेज करना पड़ेगा। अब आप सोचो हम दवाई भी खाएंगे परहेज भी नहीं करेंगे तो आप एजिटिस रहे, हमें परहेज करना पड़ेगा। तो ये जो चार नियम है, जो अपराध है, इन रूपी लंगर है, इसको हमें निकालना पड़ेगा, तभी हमारा जो हम जब करते हैं वो अपना पूरा कारगर का रिजल्ट पूरा मिलेगा। जैसे दवाई का रिजल्ट तभी पूरा मिलता है जब हम डॉक्टर के अनुसार इसको लें। तो मैं प्रभुपाद जी जैसा सिस्टम बनाया उसी में करना चाहिए। ये जो छोटे छोटे अपराध होते जाने जाने में ये बड़े खतरनाक होते हैं, तुम्हें बचना चाहिए। इसलिए भक्ति आसान भी है और नहीं भी, सुनने बड़ा अच्छा लगता है। जैसे बताया गया है कि वैष्णव के 26 गुण होते हैं, एक गुण होता है भक्त बड़ा सरल हृदय का होता है। तो सरल सुनने में तो बड़ा सरल लगता है लेकिन सरल बनने में उतना ही कठिन लगता है। सरल बनना कोई आसान काम नहीं है, राइट? सुनने में तो सरल लगता है, आप सोच सकते हैं सरल बनना बड़ा अच्छा क्वालिटी है, लेकिन आप देखेंगे तो सरल बनना इतना आसान नहीं है। उसके अंदर चाहिए पेशेंस चाहिए। अरे किससे सीखना चाहिए? भगवान राम से सीखना चाहिए। इतना बड़ा पेशेंस आज तक किसी ने आदर्श प्रश्न किया? भगवान से सीखना, भगवान स्वयं ये दिखाया। आप खुद सोचिए कि भगवान राम की पत्नी सीता ग्रहण कर लिया गया, भगवान रावण तक को मार डाला, लेकिन कभी भी अपशब्द नहीं बोले, गाली नहीं दी। और हमारे आपके बीच में आप गाड़ी जा रहे हैं, थोड़ा सा गाड़ी टच हो जाए, देखिए गाली गलत हो जाती, छोटी छोटी बात दे देना तो गाली मार पीट कितना हो जाता है, पेशेंस सही नहीं। एक बार हमारे ड्राइवर से भी सब कुछ हो गया था, कहीं तो मैंने इस अगर अगर आप 10 लाख की गाड़ी में बैठते हैं तो हृदय भी उतना विशाल होना चाहिए, क्योंकि खरोंच तो लगेगा। देखा फिर जब होती तो अभी धक्का मुक्की नहीं करता, तब तो नहीं लड़ाई होती। कार टच कर देता है, जबकि कार से ज्यादा शरीर कीमती है, जब शरीर रगड़ खाती तो कोई खाली ग्रोच नहीं करता है। लेकिन जब जब कार तक होता है तो गाली ग्रोच होता है। सोचने का अंतर है, सोचने का कितना बड़ा अंतर है, क्योंकि वो गाड़ी को जितना महत्व देता है अपने शरीर को उतना महत्व नहीं देता, पता ही नहीं है उनको, तो कुछ पता ही नहीं, बाहर की दुनिया के लोग कुछ पता ही नहीं। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम बताएं, है ना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये जो वर्तमान युग चल रहा है वास्तव में इसीलिए अच्छा है क्योंकि आप हरे कृष्ण महामंत्र का नाम लेकर के और आप अपना उद्धार कर सकते हैं, इतना आसान तरीका। आप जानते हैं सतयुग में त्रेता युग द्वापर में जितनी लड़ाइयाँ हुई, कलयुग में इतनी लड़ाई नहीं हो रही। कलयुग में कभी सुना कि देवता में और राक्षस में लड़ाई हुई नहीं, लेकिन अब शास्त्र पढ़ेंगे तो सतयुग से लेकर के द्वापर त्रेता युग में कितने बड़े बड़े राक्षस आए, बेचारे इंद्र को परेशान करते रहे, सारे देवता भाग। आज 33 करोड़ देवता भी शांति से स्वर्ग लोग में रह रहे हैं, पृथ्वी पे साधु सब कीर्तन भजन कर रहे हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चल रहा है। कलयुग इसलिए अच्छा है कि देवता भी इसमें शांति में है ना, उनको कोई खतरा नहीं है, और नीचे इंसान भी जो है थोड़ा सा कीर्तन भजन करे, क्यों राक्षसों का उपद्रव नहीं हो रहा है, कि भाई आज तक ऐसा कोई राक्षस पैदा ही नहीं कलयुग में। ये जो छोटे मोटे हैं इनको तो हरे कृष्ण महामंत्र से समझाया जा सकता है, इसीलिए भगवान जो है इस कलयुग में जाए तो कलि काले नाम रूप कृष्ण होता है, इसलिए कलयुग में भगवान कहेंगे ये तुम्हारे नाम से ही सब ठीक हो जाएगा। पर नाम के प्रति विश्वास तो हो, विश्वासम फल जाएगा, तो कलि काले नाम रूप कृष्ण होता है, इस कलयुग भगवान नाम रूप में उतार ले चुके हैं, इस पर हमें क्या होना चाहिए? विश्वास। जब इस श्लोक कह रहा है कि कलि काले नाम रूप कृष्ण अवतार, कृष्ण ही नाम के रूप में अवतार ले लिए हैं, और उन्हीं नाम के प्रति अगर हमारी रुचि नहीं है तो कृष्ण के प्रति का मतलब है कि कृष्ण के प्रति हमारी रुचि नहीं है। इसलिए कृष्ण कहते हैं सप्तम कीर्ति अंतम आम, हम नहीं कर पाते। भगवान कहते मन मना भव मद भक्तम मध्याजी माम नमस्कार, भगवान कहते हैं पत्र पुष्प फलम तो यम, इतना आदेश दिए हैं हम सबको फॉलो करने के लिए, तो कहाँ हो पाता है? इसलिए कि नाम के प्रति रुचि नहीं, नाम के प्रति रुचि इसलिए इम्पोर्टेंट है, तभी नाम के प्रति आप रुचि क्या हो जाएगी, उत्पन्न होगी, क्योंकि नाम में रुचि उत्पन्न ये आसान तरीका है। अगर आप भगवान का नाम बहुत ही आसान है, इतना आसान तरीका अगर हम नहीं कर पाते तो हम क्या कर पाएंगे? तो आप सब भक्तों से अनुरोध है कि जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप है इसलिए पूरा ध्यान कर अटेंटिवली बहुत ही सतर्कता पूर्वक हमें क्या करना चाहिए, जप करना चाहिए। जप कर जैसे प्रभुपाद जी की चांटिंग कैसे सुनिए, किस तरह से प्रभुपाद चांटिंग करते थे, राइट? हरदास ठाकुर 3 लाख जप करते थे, सोचने वाली बात, कितना 3 लाख। और जब तक जब प्रे करते थे कुछ खाते पीते नहीं थे। चैतन्य महाप्रभु की विष्णु की पत्नी विष्णुप्रिया, क्या नाम था विष्णुप्रिया ना, वो भी जब चाटिंग करती थी तो चावल रखती थी, वो जितना जब करती थी ऐसे चावल का ढेर लगा देती थी। तो जब करती थी एक राउंड हो जाता था, एक चावल निकाल करके यहाँ रख देती थी, अर्थात जितना चांटिंग करती थी उतने चावल खाती थी। अब आप बताइए 250 ग्राम चावल अगर खाना है आपको तो कितना चांटिंग करना पड़ेगा, है ना। हम ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि वो रुचि हमारे हृदय में अभी उत्पन्न हुई नहीं। हम भगवान के बिना नाम बिना रह नहीं पाते। हम लोग तो बिल्कुल रह लेते हैं, है ना, माला पूरा हुआ नहीं पूरा रख दिया, है ना, माला थली रख दिया, है ना, अपना सेवन लगा। कहने का मतलब कि कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रभुपाद ऐसा दिया है कि अगर आप समय पर सब काम करें, अर्थात समय पर हमें उठना चाहिए, 3:30 बजे तक उठ जाना चाहिए, राइट, 3:30 बजे उठ ही जाना चाहिए, तभी आपकी सारा सिस्टम सही रहे। 3:30 बजे उठ करके और भगवान का पट खुलने से पहले, क्योंकि 3:30 उठ जाए तो आधे घंटे स्नान ध्यान करके आप चांटिंग का समय पहले से मिल जाएगा, पट खुलने से पहले आप जब कुछ जब कर सकते हैं, उसके बाद चांटिंग का समय होता है जब तक दूसरा कार्यक्रम होता है वो जब का समय है, उसके बाद फिर दर्शनार्थी होती है, गुरु पूजा होते हैं, क्लास, ये सब जो हमारा सिस्टम प्रभुपाद दिया, अगर हम इस सिस्टम से चलेंगे तो सारा सिस्टम क्या रहेगा, सही रहेगा। तो उठना ये बहुत इम्पॉर्टेंट। प्रभुपाद जी कितना बड़े कृपालु हैं कि जिसका दिन का आरंभ भगवान के दर्शन से हो, मंगल आरती, एक ऐसी आरती जो मंगल करती है, जिस मंगल आरती से कल्याण करने वाली आरती, हमें मंगल आरती आना बहुत जरूरी है, कंपल्सरी जाने से, तभी हमारा मंगल होगा। जब हम मंगल आरती अटेंड करेंगे, हम मंगल आरती में आए सोचे कि हमारा मंगल होता रहे, अब मंगल ही होगा। पहली बात जब नहीं आता वो खुद ही, एक तो भक्त भी उसको हे दृष्टि से देखते हैं, बोले न बोले कि हे दृष्टि के मंगल आरती नहीं आता, बोले न बोले कि जानते हैं, अब उसका अपना मन जो है ना वो नहीं लगता, क्योंकि कुछ गलती कर रहा हूँ। इसलिए प्रभुपाद जी चाहते थे कि जो भी कैंपस के अंदर रहता है वो किसी भी आश्रम में क्यों ना उसको मंगल आरती में आना ही चाहिए। प्रभुपाद सिस्टम क्या लगा, नो मंगल आरती नो प्रसाद। अगर कोई व्यक्ति मंगल आरती नहीं आता है तो उसको प्रसाद महल नहीं जाना चाहिए, प्रसाद नहीं देना चाहिए। लेकिन आप जानते हैं मंगल आरती में भीड़ कम होगी लेकिन प्रसादम के समय भीड़ ज्यादा होगी। तो नियम प्रभुपाद जी ने इसीलिए रखा कि प्रभुपाद जी हमारा क्या चाहते थे, हमारा कल्याण चाहते थे, मर्सीफुलनेस। प्रभुपाद जी हमारा कल्याण चाहते, हमारे कल्याण के लिए प्रभुपाद जी ने एक रोष बनाया हमारे कल्याण के। तो इसलिए सब भक्तों से अनुरोध है कि आप लोग जो भी एक कार्यक्रम रखा गया है सुबह का मंगल आरती और उसके बाद दिन में सेवा करने का। प्रभुपाद जी कहते हैं कि सिर्फ जो मैनेजमेंट जो बहुत इम्पॉर्टेंट अगर काम है मंदिर के अंदर तब तो रहें, नहीं तो सब कुछ जगह बाहर जाए और क्या करें, प्रचार करें, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करें, हाँ आजीवन सदस्य बनाए, जो भी जिसकी जो सेवा है करना चाहिए, हिट द रोड। क्योंकि प्रभुपाद जी ने खुद ऐसा किया, प्रभुपाद जी ने आदेश दिया क्योंकि खुद किया। प्रभुपाद जी अकेले 3 साल के उसने वो बेंजीन लेकर के सड़क पे चले जाते थे, चले उनको हिट होता था, गिर जाते थे, फिर चले जाते थे। कितनी मेहनत किया, सोचे जब सब सो रहे होते थे उससे प्रभुपाद जी इन ग्रंथों का अनुवाद करते थे, रात रात इन ग्रंथों क्या किया, अनुवाद किया, फिर उसको छपवाना, प्रसार करना, फिर डिस्ट्रीब्यूट करना, कितना मेहनत किया इसकी। तो हमार उस देखा तो प्रभुपाद जी की एज के हिसाब से हम उतना कुछ नहीं कर रहे, हमें करना चाहिए। यदि हम चाहते हैं कि जो हम चाहें भगवान इच्छा हमारी पूरा करें तो उसके लिए समर्पण की भावना आनी बहुत जरूरी है। यहाँ के प्रभुपाद जी बोलते थे फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, पहले आप कृष्ण के लिए कुछ करिए फिर कृष्ण से अपेक्षा करिए, यहाँ क्या हम कृष्ण पक्षा करते हैं जैसे बाहर की दुनिया के लोग होते हैं? बाहर की दुनिया लोग क्या करते हैं? वो हनुमान जी की भक्ति करेंगे, शंकर जी की भक्ति करेंगे, साईं बाबा के पास जाएंगे, यहाँ जाए वहां और जितनी बूंदी नहीं होती समस्या लेकर रहेंगे। हनुमान जी के मंदिर जाएंगे, एक किलो आधा किलो बूंदी, जितनी बूंदी नहीं होती समस्याओं के लिए खड़े। ऐसे लोग वैष्णो देवी जब जाते हैं जितनी इच्छाएं लेकर जाते हैं और वहां जाएंगे माँ वैष्णो देवी जी का दर्शन करेंगे और बोलेंगे इच्छा पूरी तो फिर हम दर्शन करने आएंगे। अर्थात कंडीशन से दर्शन कि हमारी ये इच्छा पूरी हो जाए तब फिर आएंगे, फिर जाएंगे दूसरी इच्छा लेकर जाएंगे, फिर जाएंगे, मानी तभी जाएंगे जब हमारी इच्छाएं पूरी होंगी, नहीं नहीं जाएंगे। इतनी डिजायर्स। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं कि हम तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे। अनंत चिंतन तो माम ये जना हम पर पास थे तेसान योग छिवा। भगवान कहते हैं कि अर्जुन यदि कोई भक्त कोई व्यक्ति अनंत भाव से मेरी पूजा करता है, मेरी भक्ति करता है, उसकी सारी इच्छाएं मैं पूरा करता हूँ, सारी इच्छाएं। प्रभुपाद भगवान कहते कृष्ण कहते हैं सारी इच्छाएं मैं पूरा करता हूँ, लेकिन तुम्हें क्या करना पड़ेगा? एक काम करना पड़ेगा, अनन्य भाव से मेरी भक्ति करनी होगी। वो हमसे हो नहीं पाता, हम भक्ति कर नहीं पाते है नहीं, इसलिए हम शॉर्टकट अपनाते, देवी देवताओं के चक्कर में जाते हैं है नहीं, क्योंकि वो परमानेंट खुशी नहीं है। कि जब देवताओं पर मुसीबत आती है वो भी भगवान के पास जाते हैं, सोचने वाली बात है। तो हमें प्रभु के डायरेक्ट हमें भगवान से कि इसीलिए भगवान इस कलयुग में अवतार लिया नाम पर। अगर नाम के प्रति रुचि उत्पन्न है तो कृष्ण के प्रति प्रेम हमारा हो जाता है तो सारी इच्छाएं भगवान से हम पूरा कर। भगवान किया आज देखो प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि 11-12 मंदिर होने चाहिए दिल्ली एनसीआर में, सब मंदिर धड़ बंद चले जा रहे हैं। अगर आप भक्ति करेंगे तो उसका रिजल्ट भी आपके सामने आएगा ही आएगा कि भगवान हमें कुछ नहीं करना, हमें बस भगवान को समर्पण करना है, बाकी क्या काम किसको करना है? भगवान को करना है। अगर हम भगवान का चिंतन करेंगे तब भगवान हमारी क्या करेंगे? चिंता करेंगे। ऐसा चिंतन करिए कि भगवान को हमारी चिंता करनी पड़े। हम इसलिए चिंता में रहते हैं कि हमारा चिंतन ठीक नहीं, कमी हमारे अंदर, दोष हम भगवान को नहीं देना चाहिए। चिंतन करेंगे तो हम चिंता रहित रहेंगे, अगर भगवान का हम चिंतन नहीं करेंगे तो चिंता तो रहेगी रहेगी। इस शास्त्र कहता है कि अगर हम भगवान का नाम लेंगे माया दूर रहेगी, अगर कृष्णा का आश्रम लेंगे तो माया ताई झापड़िया धरे। ये माया जो है ये पिशाचिनी का नाम बताया गया। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि गले फांसी देते फिर माया तो पिशाचिनी, ये जो माया रूपी पिशाचिनी है ये हमारे गले में फांसी अथवा मृत्यु देने के लिए हमारे पीछे ही रहती है। हम जैसे हम भगवान को भूलते हैं वैसे हमें क्या करती है? वो दबोच लेती है माया। तो माया से बचने का एक ही उपाय है भगवान का, तो क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इस कलयुग का एकमात्र धर्म है भगवान के नाम का जप करना और कीर्तन करना। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, प्रश्न पूछना चाहिए। कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न है? तो यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं 16 मानक कितने लोग करते हैं बाहर? आप सब 16 माला जप करते हैं अटेंटिवली चैंटिंग ठीक है, और एकादशी के दिन 25 माला। तो भी रोहिणी में बहुत अच्छा मंदिर बन रहा है, आप लोग गए कि नहीं? रोहिणी का मंदिर किसने देखा है बनते हुए? तो अब बनते हुए देखना नहीं है, बनाने में सहयोग भी करना है बनते हुए हर चीज बड़ी अच्छी लगती है लेकिन उसे सहयोग भी करना चाहिए। देखा हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि ये मंदिर बनाने में हम कुछ कर पा रहे हैं राइट, और ये जो मंदिर बनेगा निर्माण होने के बाद हम रहेंगे या नहीं रहेंगे, लेकिन कितनी पीढ़ियां आकर के वहां पे दर्शन करेंगे कि आप जान लीजिए, ये बहुत बड़ा लाभ है। इसलिए भगवान कहते हैं उद्धव से कि जो हमारे मंदिर निर्माण कार्य में सहयोग देता, हमारे लिए मंदिर बनवाता है, तो मेरे धाम को आता है। तो आप अकेले तो मंदिर बना नहीं सकते, लेकिन मंदिर अगर इस कारण बना रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा क्या करते हैं, सहयोग कर सकते हैं। जैसे भगवान राम चाहते तो सीधा समुद्र क्रॉस कर सकते थे, राइट, लेकिन नहीं, उन्होंने मेहनत करवाई, सारे पानों को लेकर के एक पुल का निर्माण करवाया। सोचने वाली बात है, और सब बड़े खुशी से लगे थे। तो हम सब प्रभुपाद जी की सेना है, हमारा काम है मंदिर का निर्माण कराना, ताकि लोग आकर के भगवान का पूरा आशीर्वाद प्राप्त करें। इसलिए तो हरे कृष्ण महामंत्र से ही इस कान की उत्पत्ति हुई है, यही हमारा बेस है, हरे कृष्ण महामंत्र। तो इसको हम जितना गंभीरता से अपनाएंगे, अपराध रहित रह करके, उतने हम आगे की ओर भक्ति में आगे बढ़ेंगे, और आचरण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्री प्रभुपाद महाराज की, हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की।